वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं अपने उन सभी नए मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। इसके साथ उन मित्रों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर पत्र के माध्यम से अपनी आशीषों को हम तक पहुँचाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि इन दिनों हम पुराने नियम की पुस्तक में से भजन संहिता का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने 21 अध्याय तक का अध्ययन किया था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से आशीष मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि सचमुच में आप स्तुति और महिमा की योग्य परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, इस वक्त जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, आपके वचन के उस गहरेपन को समझना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं उसे समझ सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। इसके साथ हमारी प्रार्थना है हमारे उन भाई बहनों के लिए भी जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं। हाँ पिता परमेश्वर, उन पर भी अपनी अनुग्रह प्रदान करें, ताकि एक एक जीवन आपको जानने पाए, आपके उस प्रेम को समझने पाए। हाँ प्रभु, इस वक्त हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। आप हम सब की सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हमने पिछले अध्ययन में देखा जहां पर लिखा था, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहां पर हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को क्रूस के समय त्याग दिया था। अब प्रश्न यह उठता है कि उसने उसे क्यों त्याग दिया या क्यों छोड़ दिया था। तो आइए आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भजन संहिता 22 उसके 2 और 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता, परंतु तू जो इसराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। ध्यान दीजिए, वह परमेश्वर का त्यागा हुआ क्यों था? क्योंकि क्रूस के उन अंतिम 3 घंटों में गहन अंधकार में उससे पाप बनाया गया था। मेरे मित्रों, वह पल भर के लिए त्याग दिया गया था, परंतु विषमता यह है कि परमेश्वर प्रभु यीशु में होकर संसार से मेल कर रहा था। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 32 पद में, देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं क्योंकि पिता मेरे साथ है। मेरे प्रियो, बंदी बनाए जाने पर पिता उसके साथ था। जब उसे अर्थात प्रभु यीशु को कोड़े मारे गए, तब भी पिता उसके साथ था। पिता उसके साथ था जब उसे क्रूस पर कीलों द्वारा ठोंका जा रहा था, परंतु अंतिम 3 घंटों में उसने अपने प्राण को पाप बलि बनाकर चढ़ाया और पिता को यही भाया कि उसे घायल करे। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, त्यागा हुआ। जी हाँ, आप नहीं जानते कि यह कैसा अनुभव है। मैं भी नहीं जानता कि परमेश्वर द्वारा त्याग दिया जाना क्या होता है। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दुराचारी भी परमेश्वर द्वारा त्यागा हुआ नहीं है, कोई भी उसके निकट आ सकता है। परंतु जब मसीह यीशु मेरे पाप अपने ऊपर ले लेता है, तब वह परमेश्वर का त्यागा हुआ होता है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जब आपके माता पिता या रिश्तेदार किसी के लिए आपको त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं, तो आपको कैसा लगता है? यहाँ पर यीशु कहते हैं, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यहाँ पर क्यों अधीरता के कारण नहीं है, जो शब्द क्यों अधीरता के कारण नहीं है, यह क्यों निराशा का भी नहीं है, और यह क्यों संदेह का नहीं है, यह घोर कष्टों से उत्पन्न मानवीय पुकार है, जो उसके निर्दोष एवं पवित्र जीवन के कारण अधिक प्रबल हो जाती है। उसके कष्टों में अकेलेपन की भयानक एवं पीड़ित पुकार है। वह अकेला था, वह संसार के पापों को उठा लेने के कारण अकेले था। जी हाँ, पद एक में वह कहता है कि तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है। पुकार, जी हाँ, अपने मुकदमे के समय वह चुप रहा। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53:7 में लिखा है कि वह ऊन कतरने वाली भेड़ के समान शांत था, उसने मुंह नहीं खोला जब वे उसे मार रहे थे, तब उसने कुछ नहीं कहा जब वे उसके हाथों और पाँव में कीले ठोक रहे थे, तब उसने कुछ भी नहीं कहा। परंतु जब परमेश्वर ने उसे त्याग दिया, तब वह ऊंचे शब्द से चिल्लाया, वह दुख से चिल्ला रहा था। क्या आपने जंगल में कुत्तों को किसी पशु पर आक्रमण करते हुए देखा है? क्या आपने उस पशु का चिल्लाना सुना है? उसकी चीत्कार का जोड़ नहीं है। यहाँ लेखक हमें यही दिखाना चाहता है। मेरे विचार में क्रूस पर से यीशु की पुकार से चट्टाने फट गई थी, क्योंकि उसी की आवाज से चट्टाने बनी थी। अब वह सृजनहार कष्ट में है। क्रूस पर वह एक घायल पशु की नाई अर्धनाद कर रहा है। उसकी पुकार मनुष्य की सी नहीं, एक दहाड़ते हुए शेर की सी थी। वह दुख भरी पुकार थी और अनुच्चारित हाय की चित्कार थी, क्योंकि हमारे पाप उस पर थोप दिए गए थे, उस पर लाद दिए गए थे। भजन संहिता 22:6 में हम पढ़ते हैं, परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं, मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। ध्यान दीजिए, लिखा है मैं तो एक कीड़ा हूँ। उसके कहने का अर्थ क्या है? वह एक शेर की नाई गरज रहा था और अब वह कहता है मैं तो एक कीड़ा हूँ। वह इसलिए ऐसा कह रहा था कि वह निम्नतम स्थान पर पहुँच गया था। यशायाह नबी की पुस्तक 53:3 में उसके बारे में लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना, इसलिए वह कहता है कि मैं तो एक कीड़ा हूँ। यहाँ उस कीड़े का संदर्भ है जिसके द्वारा मंदिर के पर्दों को लाल रंगा जाता है। जब वह कहता है कि वह कीड़ा है, तो उसका अर्थ उसकी निम्नतम दशा से कहीं अधिक है। यशायाह नबी की पुस्तक 1:18 में उसी ने तो कहा था, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। मेरे मित्रों, केवल उसका लहू ही आपके जीवन के उस गहरे धब्बे को मिटा सकता है। मैकबेथ अपने हाथ मलते हुए चहलकदमी कर रही थी। हत्या के अपराध बोध से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। उसने कहा, अरब के सब सुगंधित द्रव्य उसके हाथों को मधुरता प्रदान नहीं करेंगे। वह सही कहती थी, वे सुगंधित द्रव्य ऐसा नहीं कर सकते थे। वह हाथों को रगड़ रगड़ कर धोती थी और पुकारती थी, हे अशुभ दाग दूर हो, मैं कहती हूँ दूर हो। मेरे मित्रों, आपको जीवन से पाप का कलंक दूर करने वाला एक ही है, और यह मसीह यीशु का लहू है। प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र का लहू सब पापों को धो देता है। केवल उसका लहू ही हमें शुद्ध एवं साफ करता है। लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। क्या आप क्रूस पर चढ़े उस अपराधी को देखेंगे? पार्श्विक जन समूह और कठोर दर्शकों के कारण उसके कष्ट अधिक दुखदायी थे। उसकी आंखों से देखिए कि क्या दिखाई देता था। भजन संहिता 22 उसके 7 और 8 पद में हम पढ़ते हैं, वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठड्ढा करते हैं और ओंठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। ध्यान दीजिए, कुछ अपराधी इतना अधिक घृणित हो जाते हैं कि वे बंदी गृह से निकाल कर जनता के सामने गोली से उड़ा दिए गए, परंतु जब अपराधी को मृत्यु दी गई तब जनसमूह विसर्जित हो गया, उनका क्रोध शांत हो गया और भावनाएं तृप्त हो गई। परंतु यह जनसमूह ऐसा नहीं था। मेरे विचार में किसी धर्म के विषय में यदि सबसे अधिक घटिया बात की गई है तो वह इन फरीसियों के बारे में है। जब यीशु क्रूस पर मर रहा था, हम मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय के 36 पद में पढ़ते हैं, लिखा है कि वे बैठकर उसे देख रहे थे। ऐसा काम करने वाला वास्तव में नीच होता है। आप इससे अधिक नीचा नहीं गिर सकते। मनुष्य के मन का विष और बुराई नालियों की नाई बह रहे थे। उसकी मृत्यु पर भी उसकी निंदा कर रहे थे। सांप भी काटने के बाद घास में गायब हो जाता है, परंतु ये जनसमूह नहीं गए। परमेश्वर का विद्रोही मन वहां से नहीं हटा। लुका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 34 पद में लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यदि यीशु उन्हें क्षमा नहीं करता तो उनका पाप अक्षम्य था। यीशु ने उनके पापों की क्षमा मांगी, उन्होंने नहीं। हम जानते हैं कि वहां के प्रभारी सेनानायक का उद्धार हुआ था। तर्शीश का शाऊल तथा अन्य फरीसी जो वहां उपस्थित थे, संभवतः उनका भी उद्धार हुआ था। हम आगे देखते हैं, हे स्त्री, तेरा पुत्र। ध्यान दीजिए, उसने उस भीड़ में घृणा और निंदा की आंखें ही नहीं, प्रेम भरी आंखें भी देखी। उसने यूहन्ना के साथ अपनी माता को देखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 25 से विदित है कि क्रूस के निकट यीशु की माता खड़ी थी। यीशु ने उसे देखा तो आप जानते हैं कि उसके मन में क्या हुआ। उसे बेतलहम में अपना जन्म स्मरण आया और वह पिता परमेश्वर से कहता है, भजन संहिता 22 उसके 9 और 10 पद में, परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्मते ही तुझ पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। तब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 26 पद में देखते हैं, लिखा है, हे स्त्री, देख तेरा पुत्र। आपको स्मरण होगा कि मरियम ने काना नगर के विवाह में यीशु से कहा था कि वह चमत्कार करके सिद्ध कर दे कि वह मसीह है और उसका कुंवारी से जन्म भी सिद्ध हो, परंतु उसने कहा, यूहन्ना उसके 2 अध्याय उसके 4 पद में, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। परंतु क्रूस पर लटके हुए उसने कहा, हे स्त्री, देख तेरा पुत्र। उसका समय अब आ गया था। संसार में आने का उसका उद्देश्य पूरा हो रहा था। संसार के इतिहास में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय था। इसके बाद उसका ध्यान उसे क्रूस पर चढ़ाने वालों की ओर गया। भजन संहिता 22 उसके 12 पद में लिखा है, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। ध्यान दीजिए, उसे क्रूस पर चढ़ाने वालों सैनिकों को वह बाशान का सांड कहता है। वह यही नहीं रुक जाता, परंतु वह उन्हें गरजने वाले सिंह भी कहता है जो उसकी ओर मुंह पसारे हुए थे, उसके उत्पीड़क थे जो ऐसे हो गए थे। भजन संहिता 22 के 13 पद में लिखा है, वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। अब रोम के विषय में वह कहता है, क्योंकि रोम ने उसे क्रूस की मृत्यु दी थी, रोम का प्रतीक शेर था, अब उसकी दशा देखें। भजन संहिता 22 उसके 14 पद में लिखा है, मैं जल के समान बह गया, और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया है, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। क्रूस का यह चित्रण आश्चर्य की बात है, क्योंकि इस भजन के लिखने के समय क्रूस का कहीं नाम नहीं था, उस समय रोमी राज्य भी नहीं था। रोम ही ने क्रूस की मृत्यु का अन्वेषण किया था, तथापि यहाँ क्रूस पर मरने वाले का चित्रण दिखाया गया है। लिखा है, मैं जल के समान बह गया, मरणहार मनुष्य का धूप में अत्यधिक पसीना बहना। जी हाँ, लिखा है कि मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। क्रूस की मृत्यु की सबसे अधिक भयानक दशा वह होती है जब उसका लहू बहता है, उसकी शक्ति चली जाती है और हड्डियां जोड़ों से उखड़ जाती है। यह एक भयानक दशा होती है, यह घोर यातना होती है। मेरे मित्रों, तब वह एक विचित्र बात कहता है, मेरा हृदय मोम हो गया है। उसकी मृत्यु हृदयाघात से हुई थी। अनेक डॉक्टरों का कहना है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 34 पद में जो लिखा है वह हृदय के फटने के कारण हुआ था। सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पांजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। मैं इसे अपने शब्दों में कहता हूँ, मैंने देखा कि एक रोमी सैनिक ने उसके पांजर में भाला मारा तो वहां से लहू और पानी निकला। यूहन्ना ने इस बात को ध्यान से देखा और लिख दिया। क्या मैं कह सकता हूँ कि यीशु हृदय घात से मरा था? मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं। लिखा है, मैं प्यासा हूँ। वह वहां लटका हुआ है और मरने पर है, उसका बहुत पसीना बह गया है, अतः उसे बड़ी प्यास लगी है। भजन संहिता 22 उसके 15 पद में हम पढ़ते हैं, मेरा बल टूट गया है, मैं ठिगरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। क्रूस के नीचे खड़े हुए लोगों ने सुना कि वह कहता है, मैं प्यासा हूँ। तब भजन संहिता 22 के 16 में लिखा हुआ है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। यहाँ पर कुत्ता शब्द अन्य जातियों के लिए काम में लिया जाता था। हाथ और पैर छेदना क्रूसीकरण का चिन्ह है। आगे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 22 उसके 17 और 18 पद में लिखा है, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। उसे नंगा करके क्रूस पर चढ़ाया गया था। आज उस अपमान को समझना कठिन है। उस युग में निर्वस्त्र किया जाना लज्जाजनक बात थी। उन्होंने उसके कपड़ों पर जुआ खेला। मेरे मित्रों, उसने यह अपमान सहा कि उसके निर्वस्त्र किए जाने के कारण आप मसीह की धार्मिकता का वस्त्र पहने और परमेश्वर के समक्ष अनंत समय तक खड़े रहें। आगे हम देखते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। भजन संहिता 22 उसके 19 और 20 पद में लिखा है, परंतु हे यहोवा, तू दूर न रह, हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर, मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। प्राण शब्द का अधिक उत्तम अनुवाद होगा एक लौता। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 17 पद में परमेश्वर यीशु को प्रिय पुत्र कहता है, मेरे प्राण को तलवार से बचा और मेरे एक लौते को कुत्ते के पंजे से बचा ले। लुका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 46 पद में यीशु ने कहा, हे पिता, तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूँ। आगे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 22 उसके 21 पद में लिखा है, मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ, जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। यह अत्यधिक असाधारण कथनों में से एक है, जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। इब्रानी भाषा में बहुवचन का प्रयोग इसलिए किया गया है कि गंभीरता को प्रकट किया जाए, परंतु विचार वास्तव में एक वचन में है, एक सिंह। पहले तो जंगली सांड को दंत कथा का पात्र समझते थे, परंतु आधुनिक के खोज से पता चला है कि यह पशु गेंडे जैसा था और हाथी से कुछ ही छोटा था। विषाक्त और पार्श्विक हर एक जन हत्यारा था। उनकी पहचान थी कि उनके एक ही सींग था। मेरे प्रियो, मेरे लिए यह एक असाधारण बात है क्योंकि जिस क्रूस पर प्रभु यीशु लटकाया गया था वह क्रूस के आकार का नहीं था जैसा आज हम प्रायः सोचते हैं। धर्म शास्त्र में भी कहीं नहीं लिखा है। यूनानी भाषा के दो शब्द ऐसे हैं जिनका अनुवाद क्रूस किया गया है। एक शब्द वह जिसका अनुवाद मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसके 40 पद में क्रूस किया गया है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि धर्म शास्त्र तो सही है परंतु हमने उसमें अपने विचार प्रविष्ट कर दिए हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 1 अध्याय उसके 18 पद में पौलुस कहता है कि क्रूस का प्रचार नाश होने वालों के लिए मूर्खता है परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। दूसरे शब्दों में क्रूस या पेड़ अनुवाद किया गया है जिसका अर्थ है मात्र काठ। पौलुस ने प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 29 पद में इस शब्द का उपयोग किया है, उसे क्रूस से उतार कर कब्र में रखा। यहाँ क्रूस का मूल शब्द है काठ। क्या यह क्रूस का आकार है? मैं क्रूस का प्रचलित आकार स्वीकार करता हूँ, परंतु इस भजन के उचित अर्थ को समझने के लिए हमें प्रथागत आकार का त्याग करना होगा। आगे देखते हैं कि जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। यहाँ जंगली सांडों के सींगों का अभिप्राय क्रूस से है। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, लुका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 46 पद में लिखा है। मेरे मित्रों, मेरे आश्चर्य की बात एक और है कि यह काठ या क्रूस शब्द प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में जीवन का वृक्ष अनुवाद किया गया है। मेरे विचार में जिस काठ पर यीशु मरा था वह भी जीवित हो गई है और अनंत काल तक जीवित रहेगी कि हम अपने उद्धार का मूल्य जाने। अब पद 22 में गंभीर परिवर्तन आता है और अब तक हम प्रभु यीशु के कष्ट को देख रहे थे परंतु अब हम उसकी महिमा को देखेंगे। भजन संहिता 22 उसके 22 पद में लिखा है, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। ध्यान दीजिए, मेरे विचार में प्रभु यीशु ने क्रूस पर यह पूरा भजन कहा था। वह पराजित होकर नहीं मरा क्योंकि अंत आने पर उसने कहा, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में पत्रस महासभा के समक्ष कहता है, दोनों फरीसी और सदूकियों से, मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। आगे हम देखते हैं, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। भजन संहिता 22 उसके 25 और 26 में लिखा है, बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है, मैं अपने प्राण को उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे, तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। क्रूस पर चढ़ाए गए अपराधी ने कहा, लुका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 42 पद में, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लुका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 43 पद में, वहां उद्धार प्राप्त उसकी स्तुति हेतु उपस्थित होंगे और उस अपराधी को वह उसी दिन अपने साथ ले जा रहा था। यद्यपि वह अपराधी रोमी मानकों के अनुसार इस संसार में जीने योग्य नहीं था, यीशु क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा उसे स्वर्ग के योग्य बनाता है। आगे हम देखते हैं, पूरा हुआ। यह सातवां कथन है जो उसका अंतिम वचन था। भजन संहिता 22 उसके 31 पद में लिखा है, वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। एक वंश पर जो उत्पन्न होगा, इसमें आप हैं मेरे मित्रों। वे उसकी धार्मिकता की घोषणा करेंगे, आपकी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हमारी धार्मिकता उसकी दृष्टि में मैले चित्रों के समान है। वे उसकी धार्मिकता की घोषणा कैसे करेंगे? यह कहकर कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। उसने जो कहा था वह केवल एक ही शब्द था, टेटलेस्थाई, अर्थात पूरा हुआ। आपका उद्धार एक परिपूर्ण कार्य है और वह उसे सबके साथ आपको देता है। वह नहीं चाहता कि आप अपनी कर्म पेटी साथ में लाएं। उसे उसकी आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, क्रूस पर जान बलि चढ़ाने के कारण उसने पवित्र परमेश्वर को संतुष्ट करने वाली धार्मिकता उपलब्ध करवाई है। वह आपसे जो चाहता है वह है कि आप इस प्रावधान को ग्रहण करें। यह परमेश्वर का वरदान है जो प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। यदि आप इसको अस्वीकार करते हैं तो परमेश्वर को आपके साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा जैसा उसने अपने पुत्र के साथ किया कि उसे कहना पड़ा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं नरक के तापमान पर विवाद नहीं कर रहा हूं। वह परमेश्वर द्वारा परित्यक्त प्रत्येक मनुष्य के लिए नरक है। यीशु ने उसे सहन किया है कि आपको कभी ऐसा न कहना पड़े। जी हाँ, भजन संहिता 22 हमारे उद्धारकर्ता का मन को प्रकट करता है। वह जो हमारे लिए पाप बलि बनाया गया, उसने इस विनिमय को जयवंत होकर पूरा किया। वह हमें सिद्ध उद्धार प्रदान करता है जिसके योग्य हम कभी नहीं हो सकते और न ही हम उसका उपार्जन कर सकते हैं। हमें इसे वरदान स्वरूप ग्रहण करना होगा। मेरे प्रिय मित्रों, 2012 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वह सब कुछ किया जो हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है, और तब उसने कहा, पूरा हुआ। क्या आज आप उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि उस उद्धार का आनंद आप प्राप्त करें? यदि हाँ, तो आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए और उसके महान आशीषों को प्राप्त कीजिए। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें एवं मदद करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।